हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12वां अध्याय श्लोक संख्या 22 और 23। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। करारिविन्दे न पदारिविन्दं मुखारिविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृतुमेत देव गोविन्द दामो धर्माधवेति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद 12वां अध्याय जिसका शीर्षक है सम्राट परीक्षित का जन्म। सम्राट परीक्षित के जन्म के बाद जब ब्राह्मण उनकी जन्म कुंडली बता रहे हैं तो उनके अंदर बहुत सारे गुणों का बखान करते हैं। वे कहते हैं कि जो बच्चा है वो आपका पुत्र मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु के समान प्रजा का पालक होगा। पार्थ प्रजाविता साक्षात इक्ष्वाकुरिव मानव ब्रह्मण्य सत्य सौंदर्य रामो दशरथे यथा, और श्री राम की तरह जो दशरथ के पुत्र हैं उनकी तरह ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्य वचन का पक्का होगा। ईश दाता शरण यश्च यथा ही श्री नर शिवी, और जिस प्रकार महाराज शिवी अपनी शरण में आए हुए समस्त जीवों का कल्याण करने वाले, जी सारी असहाय जीवों को शरण देने वाले थे, उसी प्रकार ये भी जो भी इनकी शरण में आएंगे उनको शरण सहारा देंगे। यशो वितनिता स्वानाम दुष्यन्ति जीव यश्वना, और जिस प्रकार दुष्यंत पुत्र महाराज भरत का यश सारे संसार में फैला हुआ था, वो अपने स्वजनों को स्वजनों का यश फैलाने में और यज्ञ करने वालों में ये महाराज भरत के समान होगा, और जिस वंश में आप लोगों ने जन्म लिया है और उसका यह यश बढ़ाएगा। उसके बाद बहुत ही सुंदर बताया कि ये बहुत पराक्रमी होगा, और कहा जिस प्रकार इनके दादाजी पराक्रमी हैं, धनवी नाम अग्रणी रेश तुल्यश्चार्जुन योद्धयो, दोनों अर्जुन की तरह ये धनुषधारियों में श्रेष्ठ होगा। वास्तव में राजा के अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, राजा को धनुर्विद्या में निपुण होना चाहिए, राजा को धनुर्धर होना चाहिए, धनुर्धर है ये, धनुर्धर बनेंगे। आजकल के राजा तो केवल फोन धड़ होते हैं, बस फोन हाथ में पकड़ा होता है उनको, मोबाइल फोन में खाली बातें करते रहते हैं, यहाँ पर ये हो गया, वहाँ पर ये हो गया, अरे कश्मीर में ये हो गया, ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ, बस सारी फोन पे आके बातें करते रहते हैं, और दुख का कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्या करें, ये हो गया, बस खाली फोन पर बातें ही करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, होता उनके अंदर कुछ भी, कभी भी वो आगे आके कोई कार्य नहीं करते। लेकिन पहले जो राजा होते थे उनके अंदर बहुत क्वालिटीज होती थी, यहाँ पर बता रहे हैं, हुताश इव दुर्दर्श, जिस प्रकार अग्नि के समान ये दुर्दर्श होगा, यानी जिस प्रकार अग्नि को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, जैसे कहीं पर अग्नि, सुना था कुछ समय पहले अमेरिका में कहीं पर किसी वन में अग्नि लग गई, तो बस खाली चैनल्स पे दिखा सकते हैं, बाकी इतनी भयंकर अग्नि को मतलब कंट्रोल करना संभव नहीं है। उसी प्रकार समुद्र इव दुस्तर, जिस प्रकार समुद्र को पार करना बहुत कठिन है, उसी तरह ये जो बच्चा आपका उत्पन्न हुआ है उनके बल की कोई सीमा नहीं है, उनके बल को भी कोई पार नहीं पा सकता। और आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं श्लोक नंबर 22 में, मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर वसुदेवासौ सहिष्णु पितराविव। मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर वसुदेवासौ सहिष्णु पितराविव। मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर वसुदेवासौ सहिष्णु पितराविव। बहुत ही सुंदर यहाँ पर परीक्षित महाराज के गुण बता रहे हैं। वास्तव में जिनके अंदर इतने सारे गुण हैं वही योग्य पात्र हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण को श्रवण करने का। ये श्रीमद् भागवतम महापुराण परीक्षित महाराज का उपकार है हमारे ऊपर, तो उन परीक्षित महाराज जिनकी कारण हमको ये श्रीमद् भागवतम महापुराण प्राप्त हुआ है, वो वाकई में
इस योग्य हैं कि उनकी सराहना की जाए। वास्तव में जब परीक्षित महाराज को यह श्राप दिया था उस ब्राह्मण ने, तब उनके अंदर ये क्षमता थी कि वो इस श्राप को खत्म कर सकते थे, बल्कि उल्टा उनको भी श्राप दे सकते थे बदले में। उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो ये तो उनको ये भी कह सकते थे 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु कराने वाले, तुम्हें तो 6 दिन के बाद मृत्यु आ जाएगी। परंतु ये परीक्षित महाराज चाहते नहीं थे। परीक्षित महाराज ने अपनी आई हुई मृत्यु का स्वागत किया और इसका सदुपयोग किया, इस अवसर का जो उन्हें अवसर मिला था उसका ऐसा सदुपयोग किया कि 5000 साल बाद भी हम उनका गुणगान कर रहे हैं। अगर उन्होंने उस समय कोई ऐसा उपाय कर लिया होता, उनको भी श्राप दे दिया होता, तो फिर वो उनकी मृत्यु नहीं आती और सुखदेव गोस्वामी उन्हें कभी भी भागवत ना सुनाते और हमें कभी भी भागवतम महापुराण श्रवण करने का अवसर नहीं मिलता। परंतु भगवान के भक्त इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वो अपने जीवन की बलि देकर भी जन कल्याण के विषय में सोचते हैं। तो उनके विषय में कह रहे हैं, मृगेंद्र इव विक्रांतो, ये जो महाराज परीक्षित हैं वे मृगेंद्र यानी जो जंगल का राजा सिंह होता है, सिंह की तरह महाप्राक्रमी होगा। वास्तव में सिंह जो होता है वो बहुत ज्यादा पराक्रमी होता है, वो जंगल का राजा होता है, बिना मुकुट, बिना मंत्री, बिना अस्त्र शस्त्र के वो पूरे वन का राजा होता है। वो अकेले रहता है, अपना भोजन खुद मार कर खाता है और किसी से नहीं डरता। तो ऐसे महापराक्रमी होंगे परीक्षित महाराज। और निषेव्यो हिमवानिव, हिमवानिव मतलब हिमालय की तरह, वो किस तरह क्या होंगे, शरण ग्रहण कराने योग्य, मतलब जो भी उनके शरण में जिस भी इच्छा से आएगा वो हिमालय की तरह उनके आश्रय, मतलब हिमालय की तरह आश्रित लोगों को आश्रय प्रदान करने वाले होंगे। जैसे हिमालय जो है वो उसके पास, जो हिमालय पर्वत है उसके पास लोग अलग अलग याचना लेकर जाते हैं। जैसे कुछ लोग वहां पर जाते हैं तपस्या करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो उनको वहां पर भगवत प्राप्ति होती है। कुछ लोग वहां पर योग सिद्धि प्राप्त, योग आसन लगाते हैं तो योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर उनको योग सिद्धि प्राप्त होती है। कुछ हिमालय में जाते हैं रत्न ढूंढने के लिए कि भाई वहां पर हिमालय में बहुत सारे रत्न है, तो उनको रत्न भी मिलते हैं। कुछ जड़ी बूटियां प्राप्त करने के लिए जाते हैं। तो जैसे हिमालय के पास जीव अलग अलग इच्छाएं लेकर जाते हैं और हिमालय सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, वैसे ही यह जो बालक है वो भी समस्त जीवों की समस्त इच्छा पूरी करने में सक्षम होंगे। और उसके बाद बहुत ही सुंदर बता रहे हैं, तितिक्षुर वसुदेवासौ, कि पृथ्वी, वसुधा बोलते हैं पृथ्वी को, ये दूसरों के अपराध को उसी तरह सहेगा जिस प्रकार पृथ्वी सहती है। ये पृथ्वी के समान सबको क्षमा करने वाला होगा। पृथ्वी सब जीवों पर कृपा करती है और सारे जीवों को खाद्य पदार्थ जो है, अनाज, सब्जियां, सब कुछ पृथ्वी से ही प्राप्त होता है। पृथ्वी माँ बनकर सबका पेट पालती है और फिर भी हम पृथ्वी के ऊपर क्या करते हैं, उसी पृथ्वी के ऊपर रेल की पटरियां बिछाते हैं, रेल चढ़ाते हैं, कारें चलाते हैं, उसी के ऊपर दौड़ते हैं, कूदते हैं, वहीं पर कुएं खोदते हैं, गड्ढे बनाते हैं। और पता नहीं पृथ्वी को कितना कष्ट होता होगा, पृथ्वी के उत्पादन को खाते हैं और फिर भी पृथ्वी के ऊपर ऐसा करते हैं और फिर भी वो सबको सह रही है, कभी भी क्रोध नहीं करती। अगर थोड़ा सा भी क्रोध करे ना पृथ्वी माता और एक करवट बदले ना कि मैं अब थक गई हूँ, मैं करवट बदलना चाह रही हूँ, पूरा ये जो पूरी पृथ्वी जो है ना वो उल्टी हो जाए, तहस नहस हो जाए, कभी कभी थोड़ा सा झटका देती है तो भी कितना उत्पात मचता है। तो ये बता रहे हैं ब्राह्मणगण, तितिक्षुर वसुधेवसौ, के जिस प्रकार वसुधा जो है वो सबका अपराध को सहती है उसी प्रकार ये सहेंगे। और सहेश्रों पे तरारिव कितनी क्वालिटीज हैं महाराज परीक्षित ने। सहिष्णु वास्तव में भक्त के अंदर ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, उन्हें बर्दाश्त करने वाला होना चाहिए। सहिष्णु का मतलब होता है बर्दाश्त, सहनशील। ये किस प्रकार सहनशील होगा? पितरारिव, जैसे माता पिता अपने प्रति मतलब अपने बच्चे के प्रति कितने सहनशील होते हैं। एक बच्चा जो होता है वो माता की गोद में होता है, माता दूध पिलाती है और वही बच्चा जो है दूसरी ओर से उन्हें लाते मार रहा होता है, लेकिन माता के मन में उस समय आता भी नहीं है कि इसके ऊपर क्रोध करो, यहाँ तक कि वो गोद ही में शौच कर लेता है, यूरिन कर लेता है, स्टूल कर लेता है, परंतु माता फिर भी ये कभी नहीं बोलती कि तुम कितने गंदे हो, मैं तुम्हें साफ नहीं करूंगी और आइंदा से तुम्हें दूध भी नहीं पिलाऊंगी। वो साफ करती है, उससे प्यार करती है। वास्तव में संसार में सबसे ज्यादा स्नेह करने वाली यदि कोई होती है तो वो माता ही होती है, जो अपने बच्चे से इतना स्नेह करती है। और इसके बाद भी बच्चा बहुत सारे अपराध करता है ना, बचपन से लेकर बड़े होने तक बच्चा बहुत दफा ऐसे बात करता है जो माता को बहुत ज्यादा दुखी करते, लेकिन फिर भी वो सब को बर्दाश्त करती है उन बातों को, और फिर भी उसे प्रेम करती है, सहन करते हुए भी पूरा प्रेम। ऐसा नहीं कि उसके मन में कोई और होता है, बस उस अगर वो कभी डांटती भी है तो उसके मन में केवल और केवल अपने बच्चे का कल्याण होता है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। वो चाहती है कि मेरा बच्चा जो है वो संसार में अच्छा, उसका नाम हो, मान सम्मान हो, इसीलिए उसको डांटती है, स्कूल भेजती है, पढ़ाती है, लेकिन वास्तव में वो बहुत ज्यादा सहनशील होती है। उसी प्रकार से ये सारे गुण महाराजा परीक्षित के अंदर होंगे, ऐसा ब्राह्मण बता रहे हैं। अनुवाद देखिए, यह बालक सिंह के समान शक्तिशाली तथा हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा, यह पृथ्वी के समान क्षमावान तथा माता पिता के समान सहिष्णु होगा। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की इच्छा हो, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब कोई अपने शत्रु का पीछा करने में अत्यंत प्रबल होता है तो उसकी तुलना सिंह से की जाती है। मनुष्य के घर में मेमना बने रहना, सॉरी, मनुष्य को घर में मेमना बने रहना चाहिए, किंतु शत्रु का पीछा करते समय उसे सिंह होना चाहिए। सिंह कभी पशु को पकड़ने में असफल नहीं होता, इसी प्रकार राज्य के प्रमुख को शत्रु का पीछा करने में कभी असफल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा मृगेंद्र इव विक्रांत, सिंह की तरह पराक्रमी होगा, तो घर में मेमना बनाने बोलते ऐसा नहीं, घर में धाड़ते रहो और खाली बाहर जब दुश्मन से लड़ाई करने का समय आए तो फिर घर में ना बैठ जाओ। घर में इतना ज्यादा दहाड़ने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे का साथ बेडमिनर्स करो या एक दूसरे के ऊपर घुर्राओ या फिर दहाड़ो, ऐसा नहीं। घर में तो सुकून से रहना चाहिए, लेकिन जब दुश्मन पे वार करने की बारी आए तो फिर राजा को सिंह की तरह होना चाहिए, क्योंकि सिंह अपना शिकार कभी भी नहीं उसका शिकार कभी भी उसे छूटता नहीं, जरूर उसको पकड़ता। और आगे श्रम रूपा जी कहते, हिमालय पर्वत अपनी समृद्धि के लिए विख्यात है, वहां रहने के लिए अनेक गुफाएं हैं, खाने के लिए उत्तम फलदार वृक्ष हैं, पानी पीने के लिए अच्छे झरने हैं और रोगों को ठीक करने के लिए अनेक औषधियां तथा खनिज हैं। जो व्यक्ति संपन्न न हो उसे चाहिए कि इन पर्वतों की शरण ले तो उसे सारी वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगी। भौतिकतावादी तथा आध्यात्मवादी दोनों ही समान रूप से हिमालय की शरण ग्रहण कर सकते हैं। पृथ्वी के निवासियों, अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि हिमालय के पास सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो जिसके पास नहीं है तो उधर जाना चाहिए उसको। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, पृथ्वी के निवासियों द्वारा पृथ्वी पर अनेक उत्पात मचाए जाते हैं। आधुनिक युग में लोग पृथ्वी की सतह पर परमाणु स्तरों का विस्फोट करने लगे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, फिर भी पृथ्वी माता के समान इन निवासियों के उत्पातों को सहन करती है। माता पिता बच्चों की समस्त प्रकार की शैतानियों को सहन करते हैं। आदर्श राजा में ये सारे उत्तम गुण होने चाहिए और बालक परीक्षित में इन सारे गुणों से पूर्ण होने की भविष्यवाणी की जा रही है। आगे ब्राह्मण लोग कहते हैं श्लोक नंबर 23 में, पितामह समह साम्ये प्रसादि गिरिशोपमा आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रामाश्रयः। पितामह समह साम्ये प्रसादि गिरिशोपमा आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रामाश्रयः। पितामह समः साम्ये, यानी कि समता में, समता जैसे मतलब सबको इक्वल समझेंगे, किसकी प्रकार? पितामह ब्रह्मा जी के समान, वो सबके प्रति सम होंगे। मतलब पितामह ब्रह्मा जो है वो सारे लोग के साथ समान दृष्टि से होते हैं, चाहे वो मतलब दैत्य हो या संत हो, सबको वर देते हैं। जैसे अगर कोई राक्षस भी उनका वो उनकी तपस्या करता है, उनके नाम का जप करता है, तो उनको भी ऐसा वर दे देते हैं जो सोच भी नहीं सकते। जैसे हिरण्यकश्यप को उन्होंने वर दे दिया था, ना दिन में मरो, ना रात में मरो, ना अस्त्र से मरो, ना शस्त्र से मरो, ना घर के अंदर मरो, ना बाहर मरो। तो इस प्रकार से वो सबको वर दे देते हैं, लेकिन बाद में उनको भगवान ने मना किया था कि विचार करके वर देना चाहिए, लेकिन वो सम है ना, वो देख रहे हैं कि भाई तपस्या की है तो फिर उसको वर देना चाहिए, तो इस तरह से वो सबको वर देते। उसी प्रकार ये बच्चा भी सबको समान रीति से सबको वर देगा, मतलब सबके साथ समान रहेगा। और प्रसादे गिरीशोपमा, गिरीश पते किसको बोलते हैं? शिव जी को। तो ये ब्राह्मण बोल रहे दूसरे पर कृपा करने में ये भगवान शिव के समान होंगे। वास्तव में दूसरों के सारे लोग के ऊपर भगवान शिव अति शीघ्र कृपा कर लेते हैं, बहुत ही शीघ्र वो प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़ी सी वक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए उनको उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है। बोले भोले भोले हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और उनको बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम है आशुतोष। आशु मतलब इंस्टेंट, फौरन से प्रसन्न हो जाते हैं। अब राक्षस जो है वो भगवान शिव के इस गुण का नाजायज फायदा उठाते हैं, लेकिन भगवान उनको भी, जो भगवान शिव है वो उनको भी वरदान दे देते हैं, बोलते हैं हाँ आप दे देते हैं, बस इतना सीधे साधे भोले भाले हैं। भगवान ने उनको भी पता मना किया था, भगवान विष्णु ने उनको मना किया था कि इस प्रकार से हर किसी को वरदान नहीं देना चाहिए, विचार करना चाहिए। और लेकिन जिस प्रकार ये जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं ना, उसी प्रकार जल्दी से रंज भी हो जाते हैं। भगवान कृष्ण की क्वालिटी अलग है, वो बहुत जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं, वो देखते हैं, परीक्षा लेते हैं भक्त की, फिर लेकिन जब वो प्रसन्न हो जाते हैं उसके बाद जो देते हैं वो अविनाशी होता है। अब भगवान शिव भले ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु जो देते हैं वो इतना बहुमूल्य नहीं है, जल्दी भी नष्ट हो जाता है। जैसे भगवान विष्णु ने उनकी भक्ति की थी ध्रुव महाराज ने, 6 महीने तक कंटिन्यूस उनकी तपस्या करने के बाद जब उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक सांस लेना भी छोड़ दिया, फिर कहीं जाके विष्णु भगवान ने दर्शन दिया, और जब दर्शन दिया तो उन्हें वो वस्तु दी, ध्रुलोक दे दिया। लेकिन उसी प्रकार शिव जी की एक तपस्या की थी किसने? भौमासुर ने, भस्मासुर ने। उन्होंने तो कुछ दिन ही तपस्या की और शिव जी प्रसन्न हो गए, उनको बोला कि हाँ ठीक है मैं प्रसन्न हो गया हूँ, क्या चाहिए? बोलो मुझे चाहिए कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भस्मासुर को जब शिव जी ने बोला तथास्तु, अभी ऐसा बोला तो पार्वती को देखा, बोला यार इतनी सुंदर है, मैं शिव जी को भस्म करता हूँ हाथ रख के और पार्वती को लेके जाता हूँ।
ऐसे जब सोचा शिव जी भागने लगे कि मेरे ऊपर हाथ नहीं रख दे। फिर भगवान को बोला मुझे बचाओ मुझे बचाओ। भगवान ने बोला क्या हुआ? बोला देखो ऐसा हो गया, मैंने इसको वरदान दिया, अब ये मुझे ही भस्म करना चाहता है। फिर भगवान ने उसको बहुत समझाया शिव जी को कि आइंदा ऐसे वरदान नहीं देना। फिर भगवान सारे भगवान जो है ना वो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसलिए जब भी प्रॉब्लम में आए ना मनुष्य फौरन भगवान के पास जाना चाहिए। शिव जी को भगवान ने इस प्रॉब्लम से कैसे निकाला? भस्मासुर को बोला तुम इस शिव के ऊपर यकीन कर रहे हो, ये इसको देखो तो सही, ना इसको अपने कपड़ों का होश है, ना इसको किसी और चीज का होश है, जिनों भूतों के साथ रहता है, भांग दतुरा खाता है, तुम उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। तो बोला मगर बोला देखो तुम पहले इसने जो तुम्हें वरदान दिया है ना इसको पहले टेस्ट करके देखो तो सही, ये बिल्कुल इसका तो वरदान कभी सफल होगा ही नहीं, तुम अपने ऊपर हाथ रख के देख, अगर इसका तो मैं तुमको 100% बोलता हूँ कि होगा ही नहीं, तो फिर तुम खामखा उसके पीछे भाग रहे हो। और भगवान की मोह माया से वो मोहित हो गया और अपने ऊपर हाथ रखा और भस्म हो गया। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि शिव जी बहुत ज्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अक्सर अपनी इस प्रसन्नता के कारण प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। लेकिन बता रहे हैं कि कभी जो राजा है उसे प्रसन्न हो जाना चाहिए, उनको वो देखे कि यदि कि बहुत प्रॉब्लम है किसी की तो फौरन से प्रसन्न हो जाना चाहिए। तो महाराज परीक्षित के अंदर ये क्वालिटी थी कि वो शिव जी की तरह फटाफट प्रसन्न हो जाते थे। और आगे कहते हैं आश्रय सर्वभूतानाम यथा देवो रामाश्रय। रामाश्रय मतलब लक्ष्मी महारानी की जो आश्रय है अर्थात भगवान हरि, वो भगवान के समान ही क्या करेंगे, आश्रय सर्वभूतानाम समस्त जीवों को आश्रय प्रदान करेंगे। अनुवाद, यह बालक मन की समता में अपने बाबा युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। दानशीलता में यह कैलाशपति शिव के समान होगा। यह लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान नारायण के समान सबों को आश्रय देने वाला होगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की इच्छा हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मन की समता समदर्शता के समान युधिष्ठिर तथा जीवों के पितामह ब्रह्मा दोनों ही द्योतक हैं, क्योंकि यहाँ पर पितामह लिखा हुआ है ना, पितामह समः, तो पितामह इसके युधिष्ठिर महाराज भी हैं और सारे संसार के पितामह ब्रह्मा जी हैं। तो यहाँ पर बोला दोनों का द्योतक है। तो श्रीधर स्वामी के अनुसार पितामह शब्द ब्रह्मा के लिए आया है, किंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार पितामह साक्षात महाराज युधिष्ठिर हैं, किंतु दोनों ही की तरह से यह उपमा समान रूप से उत्तम है, क्योंकि दोनों ही परमेश्वर के प्रतिनिधि माने जाते हैं, अतएव दोनों को ही जीव के कल्याण कार्य में लगे रहने से मानसिक समता बनाए रखनी होती है। शासन के किसी भी सर्वोच्च उत्तराधिकारी कार्यकारी व्यक्ति को उन सबों के घात सहने पड़ते हैं जिनके लिए वह कार्य करता है। ब्रह्मा जी की आलोचना गोपियों तक ने की, जो भगवान के महानतम पूर्ण भक्त हैं। गोपियां ब्रह्मा जी के कार्य से असंतुष्ट थी, क्योंकि इस ब्रह्मांड विशेष के सृष्टा रूप में उन्होंने पलकें बनाई, जिनके कारण भगवान कृष्ण का दर्शन करने में उन्हें बाधा पहुंचती थी। वे क्षण भर भी पलक झपकना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसने उनके परम प्रिय भगवान का दर्शन रुक जाता था। अतएव अन्यों के विषय में क्या कहा जाए, जो किसी भी उत्तरदायी व्यक्ति के हर कार्य की आलोचना करते रहते हैं। इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर को अपने शत्रुओं द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थितियों का सामना करना होता था, किंतु सभी परिस्थितियों में वे मानसिक संतुलन पूर्ण रूपेण बनाए रहे। अतः मानसिक समता बनाए रखने में दोनों पितामहों का उदाहरण अत्यंत ही उपयुक्त है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी खास बात बता रहे हैं कि जब पितामह मतलब आप यदि श्रेष्ठ बनते हो तो फिर बहुत सारे कार्य आपको करने पड़ते हैं, तो सारे लोगों को संतुष्ट करना संभव नहीं है। चार लोग आपकी अच्छाई करते हैं तो चार लोग आपकी बुराई भी करते हैं, लेकिन जो वास्तव में शासक होता है वो सबका कल्याण, सबको समान रखता है। ऐसे नहीं सोचता कि वो मेरी अच्छाई करता है तो उसको मैं अच्छा दूं और वो मेरी बुराई करता है। वो देखता है कि मुझे किस प्रकार से प्रजा का पालन करना होता है। तो ब्रह्मा जी हो या युधिष्ठिर महाराज, वो दोनों ही इस गुण में बहुत निपुण हैं। आगे वो कहते हैं, शिव जी भिखारियों को दान देने के लिए विख्यात देवता हैं, अतएव उनका नाम आशुतोष है, जिसका अर्थ है शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न होने वाला। वे भूतनाथ भी कहलाते हैं, जिसका अर्थ है सामान्य लोगों के स्वामी। अरे भूतनाथ बोलते हैं ना, तो भूत सामान्य लोगों को बोलते हैं, जीव को भी भूत बोलते हैं, जिन भूत को भी भूत बोलते हैं। अगर इस तरह से श्रील प्रभुपाद जी तो बता रहे हैं कि भूतनाथ का अर्थ है सामान्य लोगों के स्वामी, जो उनके प्रति इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि वे भावी परिणामों का विचार किए बिना वर देते हैं। रावण शिव जी के प्रति अत्यधिक आसक्त था और वह उन्हें प्रसन्न करने करके इतना शक्तिशाली बन गया था कि उसने भगवान राम की सत्ता का विरोध करना चाहा। निस्संदेह जब रावण शिव जी के आराध्य भगवान श्री राम से लड़ा तो शिव जी ने उसकी कोई सहायता नहीं की। शिव जी ने वृकासुर को ऐसा वरदान दिया था कि जो न केवल उपहासपद था अपितु भयावह था। शिव जी की कृपा से वृकासुर को इतना शक्तिशाली बन गया था कि वह जिसके भी मस्तक पर हाथ रख देता वह तुरंत ही नष्ट हो जाता था। यद्यपि शिव जी ने ही यह वरदान दिया था किंतु उस चाल ने शिव जी के मस्तक का स्पर्श करके उस चालाक ने शिव जी के मस्तक का स्पर्श करके प्रयोग करना चाहा। इस तरह शिव जी को इस मुसीबत से अपनी रक्षा करने के लिए विष्णु की शरण लेनी पड़ी। विष्णु ने अपनी माया से वृकासुर को अपने ही मस्तक का स्पर्श करने के लिए कहा। उसने वैसा ही किया जिससे वह नष्ट हो गया और इस तरह यह संसार देवताओं के चालाक याचक की सारी मुसीबतों से मुक्त हो सका। सबसे बड़ी बात यह है कि शिव जी की कभी किसी को वरदान देने से मना नहीं करते, अतएव वे सर्वाधिक उधार हैं। यद्यपि कभी कभी उनसे ऐसी भूल हो जाती है। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, रमा का अर्थ है धन की देवी अर्थात लक्ष्मी, उनके आश्रय। अब देखो श्रील प्रभुपाद जी हर एक वर्ड को समझा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रामाश्रय, तो रमा के विषय में बता रहे हैं कि उनके आश्रय भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु समस्त जीवों के पालक हैं। ऐसे असंख्य जीव हैं जो न केवल इस लोक में रहते हैं अपितु अन्य लाखों लोकों में भी आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए उन सबको जीवन की समस्त सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में वे माया के कारण कठिनाई में फंस जाते हैं। वो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत खास बात बताई है कि आत्म साक्षात करने के लिए जो आपको वस्तुएं आवश्यक हैं वो आपको हर एक जगह पर प्राप्त होती, लेकिन वो सिर्फ आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए जो नीड्स होती है ना, आपकी जो जरूरियात है वो आपको प्राप्त हो जाती है, लेकिन इंद्र तृप्ति वो कभी संभव नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही भोग प्राप्त क्यों ना हो कर ले, इंद्रिय तृप्ति नहीं कर सकता, तो इंद्रिय तृप्ति के मार्ग में वे माया के कारण कठिनाई में फंस जाते हैं। अतएव वे आर्थिक विकास की मिथ्या योजना के मार्ग पर विचरण करते हैं। ऐसा आर्थिक विकास कभी सफल नहीं होता क्योंकि यह भ्रामक है। हम सोचते हैं कि संसार में हम लोग बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएंगे, आर्थिक विकास कर लेंगे तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन ये संभव नहीं है क्योंकि यह भ्रामक है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं ये लोग भ्रामक लक्ष्मी देवी के पीछे पीछे लगे रहते हैं, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि लक्ष्मी जी केवल विष्णु के संरक्षण में ही रह सकती है। विष्णु के बिना लक्ष्मी जी कोरी माया है। अतएव हमें प्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मी जी का आश्रय न ढूंढकर विष्णु का आश्रय लेना चाहिए। केवल विष्णु तथा उनके भक्त ही सबों को आश्रय प्रदान कर सकते हैं। और चूंकि महाराज परीक्षित की रक्षा स्वयं विष्णु कर रहे थे, अतएव यह सर्वथा संभव था कि वे अपने शासन में रहने वाले सबों को पूरा संरक्षण प्रदान करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बताया कि जिस प्रकार लक्ष्मी देवी स्वयं भी भगवान का आश्रय प्राप्त करती है, लक्ष्मी देवी स्वयं सुरक्षित नहीं है, वो भी भगवान के आश्रय में रहती है। और अगर साधारण जीव को वास्तव में अपना कल्याण चाहिए तो उन्हें भी जो लक्ष्मी के आश्रय है, यथा देवो रमाश्रय, वो भगवान की शरण लेनी चाहिए। और ये जो परीक्षित महाराज हैं, वो भगवान की तरह सबको आश्रय देंगे, सबका कल्याण करेंगे। मतलब ये हुआ कि वो सबको भगवान की शरण में ले जाने वाला कार्य करेंगे, अर्थात वही श्री परीक्षित महाराज हैं जो हमें, जिनकी कृपा से आज हम भागवत महापुराण श्रवण कर रहे हैं, अर्थात हम भगवान का आश्रय प्राप्त कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा और साथ रहिएगा ताकि हम और भी भागवत महापुराण का मधुर रस आस्वादन कर सकें। हरे कृष्ण।